Om Shanti. 21st अक्टूबर 1980। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में न लाओ, इसको कहा जाता है क्या? बीती को चिंतन में न लाओ, इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है क्या? बीती को चिंतन में न लाओ, इसको कहा जाता है डैश। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। संगम युग की दो घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। संगम की वैल्यू को जानते हो ना? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गवाया, लेकिन अनेक वर्ष गवा दिए। इसलिए फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा क्या रहेगा? जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वो सदा फुल रहेगा। तो मुरली है 21 अक्टूबर 1980 की। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में न लाओ, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? समझदार। वो तो डैश हमने छोड़ा था आपके लिए। बीती को चिंतन में न लाओ, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो बीती का चिंतन न करना, बीती को चिंतन में न लाना, ये तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा है। अगर बीती को चिंतन करते हो तो क्या होता है, क्या वेस्ट जाता है? समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। संगम युग की दो घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट करती है। संगम की वैल्यू को जानते हो ना? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गवाया, लेकिन अनेक वर्ष गवा दिए। इसलिए अब फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप लगाना, जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वो सदा कैसा रहेगा? फुल रहेगा। 1980 में बाबा ये बातें कर रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा क्या बताई आज? तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बीती का चिंतन न करना। तीव्र पुरुषार्थ की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग मुरलियों में आई है। उसमें से दो मुख्य परिभाषा जो पापा ने बताई है वो एक, जो गलती एक बार हो गई है उसको दोबारा न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। जो अवस्था 1 सेकंड पहले है, 1 सेकंड के बाद उससे आगे हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। जो बीत गया है उसको बिंदी लगाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो बीती का चिंतन करने से क्या होता है? समय, संकल्प, शक्ति वेस्ट। कौन सी बीती का हम चिंतन करते हैं? ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो बीत गई और जिनका हम चिंतन करते हैं, जहां नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, जहां पर दुख दिया था, जिससे झगड़ा टकराव हुआ था, जब किसी ने अपमान किया था, जब धोखा हुआ था, कौन सी बीती का हम चिंतन करते रहते हैं? जहां असफलता हुई थी, हमारी बात को किसी ने काट दिया, ठुकरा दिया, सुना नहीं, असहयोग दिया, अपमान बोल दिया, और कौन सी बीती बातें हैं? कोई चीजें, वस्तु, स्थूल वस्तु नुकसान में आ गया हो, और बोल दिया, जब निराश हो गए थे तो उसका अभी चिंतन करते और कौन सी बीती बातें हैं जिनका व्यक्ति चिंतन करते रहता है, बैठकर सोचते रहता है, जो कुछ हो गया है जीवन में वो कौन सी बातें हैं, पश्चाताप, गलती और उसका पश्चाताप, और जो पास्ट में हो गई थी अभी स्वस्थ है तो उसका बीमारी का चिंतन, और बोल दिया धोखा, और व्यक्ति किन चीजों का चिंतन करते बैठता है,
सेवा में आगे न रहे,
सेवा में
आगे न रखा जाए,
अपमान में आ गया, अपमान ध्यान न देना, और
प्राणी संबंधों की, प्राणी पालना की,
नहीं निगेटिव बातें, लौकिक बातें, अच्छा उधर अच्छी मिली थी यहाँ अच्छी नहीं मिल रही है, हाँ और जो व्यक्ति एकांत में बैठा रहता है तो कौन सी बातों का चिंतन करते रहता है, वो बातें जो कुछ काम की नहीं है, ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिसमें समय जाता है, शक्ति जाती है, एकांत में बैठ के दूसरों के अवगुण को चिंतन, बीती बातों का चिंतन न करना, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाना, ये दिव्य पुरुषार्थ है। तो मनुष्य का मन वो सारी चीजों का चिंतन करते रहता है जहां पर वो आहत हुआ है, उन सारी चीजों का चिंतन करते रहता है जहां उसे चोट लगी है, उन सारी चीजों का चिंतन करते रहता है जब वो मानसिक बौद्धिक भावनात्मक रूप से आहत हुआ है, इमोशनल हर्ट्स, इमोशनल ट्रॉमा, जब उसे बहुत पीड़ा हुई थी, दर्द हुआ था, मानसिक दर्द, उसके कारण जितने आप सबने बताए उनमें से कुछ भी हो सकता है, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने अविश्वास किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने आगे बढ़ने नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीव्र पुरुषार्थ कैसे किया जाए, ये तो बहुत मुश्किल काम है कि वो याद ना आए, याद तो आएगा, यादों को रोका नहीं जा सकता, जो भी आत्मा के साथ हुआ है, जो भी आत्मा ने किया है वो सब रिकॉर्ड हो गया है उसमें, कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता, सारा के सारा रिकॉर्डेड है। तो क्या किया जाए, कैसे ये तीव्र पुरुषार्थ किया जाए फिर? हाँ वही बीती सो बीती कैसे किया जाए, कहने से तो नहीं होगा, ना ही स्लोगन याद रखने से होगा, बीती सो बीती, बीती सो बीती, बीती सो बीती, वो अपने जगह पर है बीती सो बीती कहना, और जो अतीत है और अतीत से हर मनुष्य जुड़ा हुआ है, जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो सबको उसने पकड़ के रखा है, और अज्ञात में उससे उसे बहुत प्यार भी हो गया है, ये भी जानता है कि जो हुआ था, जो अतीत है बहुत दुखदायी था, पर उस दुख का ही उसे एडिक्शन हो गया है, वो बार बार उस दुख का स्मरण कर उसी अवस्था में फिर जाना चाहता है जहां जब वो चीज हुई थी, और वही स्थिति का फिर निर्माण करता है। तो बाबा ने कहा है तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बीती को बीती कर देना, ये तीव्र पुरुषार्थ है, बीती का चिंतन न करना, क्योंकि चिंतन करने से समय शक्ति संकल्प सब व्यर्थ जाता है और बीती का चिंतन होते रहता है, ये भी उतना ही सत्य है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता है कि हम बीती का चिंतन नहीं करते, क्योंकि मन में विचारों का प्रवाह चालू ही रहता है। केवल जब हम सोते हैं तब वो विचार कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, बाकी दिन भर कुछ ना कुछ विचार चालू ही रहते हैं। बहुत सारे विचार अतीत से आते रहते हैं, बहुत सारे विचार भविष्य के और कुछ विचार वर्तमान के। तो फिर से उसी प्रश्न के ऊपर कि जो भी हो गया है, जो भी बीत गया है, वो बहुत पीड़ादायी है, और केवल ये कहने से कि उसको भूल जाओ, कोई भूलता नहीं है, केवल ये कहने से कि बीती को बीती कर दो, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। उसकी कुछ विधि है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च इस पर भी किए हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत अधिक रिसर्च करके उसने लिखा है कि ऐसी 5 चीजें हैं जो हर व्यक्ति को करनी है। और वो लिखने के बाद भी उसने कहा है कि वो 5 चीजें करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अतीत के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अतीत से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि पास्ट अतीत की स्मृति आती रहेगी, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है इसलिए मुझे वो याद है। परंतु एक और एक चीज है, मेमोरीज को डिलीट नहीं किया जा सकता है, परंतु उसे उस समय याद करना न करना ये मेरे हाथ में है। जैसे एक व्यक्ति घर पर है, उसको अपना परिवार याद है, परंतु जब ऑफिस चला गया है तो अपने ऑफिस के काम में वो बिजी हो गया है। ब्रेन का एक जो पोर्शन है मेमोरी का, उस पर जब फोकस नहीं है, लाइट कहीं और फोकस है, तो वो बातें याद रहती है। तो जरूरी नहीं है कि वो चीजें वो भूल गया है, परंतु वो जब ऑफिस का काम कर रहा है तो उतने समय के लिए वो जो घर की चीजें है वो थोड़े समय के लिए भूल गया है। संसार में बहुत समस्या है, व्यक्ति मधुबन में आते हैं, संसार से आत्माएं आती है यहाँ पर, कुछ समय के लिए वहां की चीजें भूल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीजें डिलीट हो गई है, वो सारी चीजें हैं वहां पर। तो ब्रेन में डिलीट तो तभी होगा जब ब्रेन ही नष्ट कर दिया जाएगा। ब्रेन के कुछ हिस्से अगर नष्ट कर दिए जाए तो व्यक्ति भूल जाता है। जैसे किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जैसे एक डॉक्टर थे जो बहुत बड़े विख्यात प्रसिद्ध डॉक्टर थे, बहुत सारी उनके पास डिग्रियां थी, एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उनकी याददाश्त चली गई। अब याददाश्त चले जाने के बाद 3 साल तक वो कोमा में थे, और कोमा से जब बाहर निकले थे तो याददाश्त चली गई थी। बाद में उन्होंने वापस ABCD से चालू किया सब कुछ, उनकी वो पढ़ाई सब कुछ भूल गया वापस से, जैसे बच्चा हो जाता है वहां से सब चालू किया, वो सारी डिग्रियां उन्हें कुछ कुछ भी याद नहीं। तो शायद ब्रेन में ऐसे बहुत सारे हिस्से है जहां पर मेमोरीज के सेंटर है, तो जब तक ब्रेन है तब तक यादें तो रहेगी। बाबा कह रहे बीती को चिताओ नहीं, चिंतन नहीं करो, परंतु चिंतन तो होगा। कुछ ऐसे देश भी है कि जहां पर एक टेक्निक है जिसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग की टेक्निक होती है, अगर बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति है तो उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, और जब वो उस सारी प्रक्रिया से बाहर निकलता है तो सारे धर्म को भूला हुआ होता है। वो भी अपने आप में एक टेक्निक है ब्रेन वॉशिंग की। फिर से उसी प्रश्न के ऊपर, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात बीती का चिंतन नहीं करो, कैसे? तो उसमें 5 बातें हैं। पहली बात जो उस मनोविश्लेषक ने लिखी है, वो है डिसीजन। पास्ट की बातें जो है वो अपने आप नहीं जाएगी, एक दृढ़ संकल्प या एक निर्णय करना होगा कि मुझे ये जो भी पास्ट हुआ है मेरे जीवन में उसको भूलना है। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो बातें एंडलेसली नॉन स्टॉप चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी। किसी ने अज्ञान काल में कोई एक गलती कर दी है, ठीक है, लौकिक में उससे शायद किसी की मृत्यु भी हो गई थी या किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, फिर ज्ञान में आ गए, सारा ज्ञान समझ में आ गया, कई वर्ष गुजर गए, परंतु अब भी मन कभी कभी खिन्न हो जाता है उस बात को सोचकर कि मेरे वजह से किसी की मृत्यु, किसी का नुकसान, किसी को धोखा, कुछ तो हुआ था जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है, या हमारे किसी झूठी गवाही से किसी को सजा, या हमारे कोई एक झूठ बोलने से किसी पर दोषारोपण, कुछ तो हुआ था। हाँ, वो तो आएगा, कितना भी निर्णय करो वो भी आएगा, परंतु फिर भी पहली विधि जो बताई गई है वो है एक निर्णय। क्योंकि जब तक हम निर्णय नहीं लेते, वो जो श्रृंखला है वो चालू ही रहेगी, चालू ही रहेगी, निर्बाध चालू ही रहेगी। एक निर्णय चाहिए कि बस जो हो गया वो हो गया, अब मैं इसका चिंतन नहीं करूंगा, इसको मुझे भूलना है, इसके प्रभाव से मुझे मुक्त होना है। वो जो था वो अतीत था, वो जो था उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मन जब तक अतीत के जख्मों से भरा है तब तक नई चीजें वहां कैसे आएगी। हृदय जब तक रिक्त ना हो, यदि हृदय में चोट है, घाव है, बहुत सारी बातें जिन्होंने आहत की है उनका संग्रह है, तो नए संकल्प, नया उत्साह, नया उमंग वहां कैसे आएगा। तो पहला है डिसीजन, एक निर्णय कि मुझे पास्ट से, मुझे अतीत से, मुझे जो कुछ हो गया है उसके प्रभाव से क्या होना है, मुक्त होना है। एक दूसरा है एक्सप्रेशन। पहला बताया डिसीजन, दूसरा है एक्सप्रेशन। अब वो बात हमारे साथ हुई है और केवल हमें ही पता है और हमने आज तक किसी को बताई नहीं, और वो अंदर ही अंदर संकल्पों में आती रहती है। एक्सप्रेशन अर्थात उसको व्यक्त करना। प्रेशर कुकर में वो बात, जैसे प्रेशर कुकर है, इतना उसमें प्रेशर हो गया है, इतना प्रेशर हो गया है कि वो फट सकता है, उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वहां तो लिखा है कि किसी मित्र को लिखो जिस पर तुम्हें विश्वास है, या फिर एक पत्र लिखो बेनामी जो कि कभी भी आप पोस्ट नहीं करोगे किसी को भी, कभी भी लेटर बॉक्स में नहीं डालोगे, बस पत्र लिखो, या फिर भगवान को पूरी बातें बता दो, एक ऐसा पत्र कि जिसमें वो सारी चीजें हो जो आपने गलती की है, जो छिपाई हुई है, जो किसी को बताई नहीं है, परंतु या फिर आप आहत हुए थे, धोखा हुआ था, दुख हुआ था, आपके मन में अब भी है कि वो गलती उसकी है, और ये भाव अंदर ही अंदर दबा हुआ है, दमित भावनाएं, सप्रेस्ड फीलिंग्स, रिप्रेस्ड इमोशंस, ये जो जज्बात है जो भाव और भावनाएं हैं वो दबे हुए हैं प्रेशर कुकर की तरह, और नीचे से आग, ऊपर से ढक्कन और बंद, पानी उबल रहा है। क्या करेगा, क्या किया जाए? खोलना पड़ेगा कि नहीं? किसी ना किसी को बताना पड़ेगा। जब तक लोग क्या करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका लौकिक कोई मित्र संबंधी जब मृत्यु हो जाती है तो उनको यह दिखाना होता है कि हम ज्ञानी हैं, इसके लिए रोते नहीं है। अंदर से रोना बहुत आता है, पिता ने शरीर छोड़ा, मां ने शरीर छोड़ा, बहन ने, भाई ने, बहुत प्यार था और बहुत रोना है, परंतु रोए तो इसके मतलब हम अपना अज्ञानता प्रकट कर रहे हैं। हम ही दुनिया को कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हम दुनिया को आत्मा का अमरता का ज्ञान सुनाते हैं, पर लगाव तो इतना है कि हम मित्र संबंधी बीमार है तो बहुत जार जार रोने की इच्छा है, परंतु ब्राह्मण सभ्यता रोकती है तो वो वैसा ही बंद रह जाता है अंदर ही अंदर। एक दूसरी अवस्था है कि जिसमें हम नष्ट मोह हुए हैं और कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो एक दूसरी अवस्था है, वो योगी की अवस्था है, उसमें भी बहुत सारी आत्माएं हैं, पर हम कुछ उन कमजोर आत्माओं की बातें कर रहे हैं जो ज्ञान में तो आ गए, ज्ञान को समझा नहीं है, और मित्र संबंधी कोई चला गया है और अंदर से इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना आहत हुए हैं कि बहुत बहुत रोने की इच्छा है, परंतु रोक दिया। अब वो जो आंसू है उनका क्या? वो इसके लिए रो लो, निकालो बाहर, एक बार पूरा प्रकट कर लो, नहीं तो सारी उम्र चलेगा वो। उस समय अगर नहीं रोया, हम ये नहीं कह रहे रो, हमें तो बाबा ने रोना मुक्त बनने के लिए कहा है, वो डिफरेंट बात है, वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है, वो तो योगी की अवस्था है, उसके लिए तो स्वयं को तैयार करना पड़ता है। बहुत सारी बातें हमने चिंतन की है, मनन की है, हृदय में धधकता हुआ वैराग है, पता है सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई किसी का नहीं है, ऐसे भाव पहले से ही है, और उसके बाद में पहले से ही उन चीजों से नष्ट मोह थे और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां एक्सप्रेस करना, वहां प्रकट करने की वहां कोई आवश्यकता नहीं, वो योगी की अवस्था है, परंतु इस अवस्था में कितने लोग हैं? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। और ये बातें भाइयों में ज्यादा है कि जो रोते नहीं है, बहने रोकर प्रकट कर देती है, उस समय मुक्त हो गए उससे, परंतु जो दमित भावनाएं हैं, जो दबा के रख दिया है, उसको एक्सप्रेशन चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए, तो अभिव्यक्त करना, वो कुछ भी हो सकता है, हम सबके सामने स्टेज पर किसी ने हमारा अपमान कर दिया और हम कुछ न कर सके, ये चीज है। दूसरी है कि हमारे अंदर अहंकार है ही नहीं, बाबा ने कहा ना महाबलवान, परसों का वरदान, दो बाधाएं हैं, निराशा और अभिमान। वो दूसरी है कि व्यक्ति को अपमान महसूस ही नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, परंतु वो व्यक्ति जिसको वो फील हुआ, हर्ट हुआ, आहत हुआ, उसको लगा कि मेरी इज्जत चली गई है सबके सामने, अब वो जो हर्ट है उसका वो क्या करेगा? रोना तो आ रहा है पर बताएगा किसके सामने? किसके सामने बताए तो लोग समझेंगे, ये देखा कमजोर निकला, हमने तो अपनी ऐसी छवि बनाई थी कि जो हम बहुत ज्ञानी हैं, धारणाओं में बहुत पक्के हैं, पर हमारे अंदर वो एकिलिस हिल, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं था जिसको आहत किया गया और अश्रुधारा बहने को है पर रोके हुए है। एक्सप्रेशन जरूरी है, किसी के सामने भी कर दो, इसके लिए क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन करते हैं, पादरी के सामने जाओ, पोप के सामने जाओ, और रो दो, उसको सब बता दो मैंने ये किया है। यहां पर करना है एक्सप्रेशन एक परमात्मा के आगे। परंतु कल कहा ना, अंदर बाहर साफ हो, जो गलती की हो बाप को बता दो, छुपाओ नहीं, हाइड नहीं करो, बता दो ये है, जो है वो ये है। अगर मेरे से बड़ा पापी संसार में कोई नहीं, तो तेरे जैसा रहम दिल भी तो कोई नहीं है। मेरे पाप अनगिनत है, पर क्या तेरी कृपा अनगिनत नहीं है? क्या तेरी अनुकंपा अनगिनत नहीं है? तू भी तो रहम का सागर है। एक्सप्रेशन तीसरा है, स्टॉप द ब्लेम गेम। जो कुछ हुआ उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना या फिर स्वयं को ब्लेम करना बंद करना है। हमारे मन में ये इच्छा होती है कि दूसरा आकर कहे कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। ये अज्ञात इच्छा अंदर है, क्योंकि हमें पता है उसने गलती की है, ये उसी की गलती है, वो आकर कहे कि मेरी गलती है। एक तो ये इच्छा है, दूसरी अगर उसने उसके उलट कह दिया हाँ मैंने गलती की, तो क्या कर लोगे? वो तो और ही ज्यादा, दोनों ही अवस्थाओं में हम ही दुखी होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही अवस्था में हम ही दुखी है। अगर वो नहीं मानता है या उससे आगे बढ़कर ये भी कह दे कि क्या कर लोगे, बोलो, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं यहां पर, तुम क्या करोगे हमारा, अभी भी आए हो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, अपनी खुशी की जिम्मेवारी खुद लेनी है। दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा चीज जो करते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, और जो एकदम कमजोर होते हैं वो फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं और उसी ब्लेम में जीते हैं कि शायद मेरी गलती होगी। पॉजिटिव अर्थों में नहीं, नेगेटिव अर्थों में, मैं ही ऐसा हूं, मुझे ही नहीं आता है, मैं आया ही क्यों यहां पर, मेरे में योग्यता ही नहीं है, पता नहीं भगवान ने क्यों चुन लिया, कुछ तो खास मेरे में है नहीं। जहां जाता हूं गलती आई होती है, जहां जाता हूं डांट ही पड़ती है, जहां जाता हूं एडजस्ट हो ही नहीं पाता। लोग देखो कैसे एडजस्ट हो गए इतने सालों से, मैं क्यों नहीं हो पाता। खुद को ब्लेम करते रहना, अंदर ही अंदर निगेटिव सेल्फ टॉक, इसको कहा जाता है नकारात्मक आत्मसंवाद, स्वयं से स्वयं के प्रति नकारात्मक भाव से बात करना। तुम में कोई योग्यता नहीं है, लोग देखो कितने आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम किसमें तो आगे बढ़े, वो उसमें आगे चले गया, वो उसमें आगे जा रहा है, वो उसमें आगे जा रहा है, मैं किसमें जाऊं, मुझे भी तो कुछ मार्ग मिल जाए, पर योग्यता भी तो नहीं है मुझ में, क्यों जाऊंगा आगे। इसे कहा जाता है सेल्फ टॉक, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भाव, हीनता, न्यूनगंडता। तीसरा तो ये गेम को बंद करना है। चौथा है वर्तमान में जीना, हियर एंड नाउ। वर्तमान में जीना, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट। पास्ट का चिंतन करते 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 वर्तमान हाथों से निकला जा रहा है। कब जीऊंगा इस दिन को, आज के दिन को कब जीऊंगा? आज एक नई सुबह, 26 तारीख सितंबर मास 2017, 6 बजने को है, सुबह का समय है, सूरज अभी उगने वाला है, ये आज का दिन है, ये सुबह का समय है, सारा दिन सामने है। अब मेरे हाथ में डिसीजन है, सुख और दुख दो रखे हुए, क्या लू? खुशी और दुख, दो चीजें सामने है, यदि मैं, ये मेरा चयन है, मेरी चॉइस है, दुख को लेता हूं तो सारा दिन दुखी, सुख को लेता हूं तो सारा दिन सुखी। क्या लेना है दोनों में से मेरे हाथ में? तो चौथा है वर्तमान में जीना। निगेटिविटी का फोर्स ज्यादा ही होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना है धीरे धीरे। उसके बारे में चिंतन इस तरह करना है कि ये सब करके मुझे क्या मिलेगा। ये अच्छा, उसने मुझे दुख दिया, मैं चाहता हूं कि वो आकर माफी मांगे या कुछ करे या कुछ करे या कुछ करे। उसने कर भी दिया तो क्या फायदा? अहम कभी संतुष्ट थोड़ी होगा। वर्तमान में क्या करना है आज, बाबा कह रहे ना समय व्यर्थ नहीं गवाओ, प्लानिंग करो कौन सी चीजें मुझ में नहीं है उस पर काम करो। कल कहा ना ये मत बोलो कि मुझे बोलना नहीं आता है, प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो। छोटा बच्चा बोलता है मम्मा बाबा, तुम भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। जो चीज नहीं आती है उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें टाइम लगाओ। ये स्किल है, ये सेवा है, ये सेवा कितना दिन में मैं इसमें मास्टरी मिलाऊं। रोम में एक बार 3 अमेरिका से स्टूडेंट आए चर्च में, और मुख्य पादरी थे, वो धर्म की शिक्षा लेने आए। 3 स्टूडेंट्स धर्म के स्टूडेंट। तो पहले को पूछा गया तुम यहां कितना दिन रुकोगे? उसने कहा मैं यहां लगभग 3 साल रुकूंगा। तो वो मुख्य पादरी ने कहा शायद तुम थोड़ा बहुत सीख लोगे जो यहां हम ज्ञान देंगे। दूसरे से कहा तुम कितना दिन रहोगे? उसने कहा मैं 3 हफ्ता रहने के विचार से आया हूं। तो उसने कहा तुम बहुत कुछ सीख लोगे। तो तीसरा तो मुश्किल में पड़ गया क्योंकि वो 3 ही दिन के लिए आया था। तो उससे पूछा गया तुम कितना दिन आए हो यहां? उसने कहा मैं 3 दिन के लिए आया हूं। तो उसने कहा तुम शायद सब कुछ जहां हमारे पास जितना ज्ञान है इधर वो सभी तुम ले लोगे, क्योंकि जिसके पास केवल 3 दिन है उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, उसको 3 ही दिन में सब कुछ सीख लेना है। बहुत टाइम उसके पास बहुत कम है, बहुत कम समय में उसको, क्योंकि उसको पास ध्यान है कि कम समय में मुझे इतना सब कुछ करना है। अब जिसके पास टाइम का कोई बंधन ही नहीं है, एक सेवा दे दी गई और कहा कि तुम ये सीख लो, कोई उसको टाइम नहीं बताया कितना दिन में सीखना है, वो सीख ही रहा है 10 साल हो गए अभी तक सीखा नहीं है। पर किसी को कहा देखो पुष्पा रानी दीदी को कहा गया था तुम 15 दिन में टाइपिंग सीख लो हिंदी टाइपिंग, 10 दिन में सीख गई। कितना मुश्किल काम है। लक्ष्य जब है या दिया गया है तुमको 10 दिन में ये सीखना है तो व्यक्ति दिन रात लगा देगा और सीखेगा। पर कहा कि तुम देखो जितना तुमसे होता है, मुरली पढ़ के रखो, जब टाइम आएगा तुमको बोलेंगे रिवाइज करने को, छोड़ दिया। 5वीं बात है फॉरगिव, माफ कर देना। जिन्होंने दुख दिया, आहत किया, चोट पहुंचाई, धोखा दिया, अविश्वास किया, बुरा व्यवहार किया, सताया, शारीरिक पीड़ा दी, मानसिक यातनाएं दी, एक तो उनको माफ करना, पर उससे भी बड़ी और एक बात है खुद को माफ करना। व्यक्ति खुद को माफ नहीं कर पाता उस भूल के लिए, उस अपराध के लिए, उस पाप के लिए, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। और मुख्य रूप से यदि वो काम विकार की गलती है, 10 साल योगी जीवन और उसमें 1 दिन विकार की भूल, वो 10 साल तक चलाता है, उससे ऊपर निकल ही नहीं पाता है, उसी गिल्ट कॉन्शियसनेस में अपराध भाव में जीता है सारा जीवन। चाहे विकार हो, काम हो, चाहे व्यर्थ हो, चाहे दूसरों से आई हुई कोई चीज हो, वो जो भी है, क्या उनका अभी कोई अस्तित्व है? हुआ बहुत बुरा था, वो नहीं होना चाहिए था, माना नहीं होना चाहिए था, पर हुआ ना, रिकॉर्ड हो चुका है ड्रामा में, अब क्या? माना नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं था, सीन खराब था, परंतु सीन रिकॉर्ड हो गया। अब मेरा लक्ष्य क्या है कि अब अपनी टॉर्च उस सीन पर फोकस किए बैठे रहूं और देखते रहूं उसको और दुखी होते रहूं? क्यों? वो पवित्र जीवन भी तो था, वो अच्छे पल, अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ समान के संकल्प, बाबा मिलन का वो समय, योग का समय, संगठन का योग, दादियों की क्लासेस, उस सभा को भी तो याद करो, वो भी तो मोमेंट्स है जीवन के। क्या पश्चाताप में ही सारा जीवन बिता दोगे? बाबा ने मुरली में कहा है पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट नहीं करो, पश्चाताप करो, सीखो उससे, क्या मैंने उससे सीखा है, पाठ पढ़ो और आगे बढ़ो। उसी के बारे में सोचते 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 दुखी नहीं हो जाना है, दुखी नहीं करना है, क्योंकि वर्तमान जा रहा है। वो तो गलती की, अब ये दूसरी गलती है, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, उसको रिवाइज करना। रिवाइज करते हैं हम मेंटल रिवीजन, जैसे मुरली को रिवाइज करते हैं, यहां सुनानी होती है तो वैसे वो जो दुखदायी घटना है उसको रिवाइज ही करते रहते हैं, अपने आप रिवाइज ऑटोमेटिक, फिर आदत पड़ जाती है। आदत होने के बाद में रिवीजन के लिए थोड़ा ना कुछ करना पड़ता है, वो अपने आप सारी पॉइंट्स आ जाती है। इतनी बार जैसे किसी ने एक ही क्लास 15 जगह कराई है, अब उसको 16वीं बार कराने को कुछ नहीं करना पड़ता है, बैठा और क्लास चालू, एक ही क्लास, सपने में भी क्लास, किसी को भी करा सकता है वो एक ही क्लास। जैसे एक साधु था ना, उसको दो भाषण उसने तैयार रखे थे, जिस भी गांव में जाना दो भाषण रेडी, और दो एक्स्ट्रा रखे थे अगर कहीं अचानक कहीं बुला लिए तो वो दो, तो टोटल चार भाषण थे उसके पास। जहां भी जाता था कोई उसको टेंशन ही नहीं रहता था, क्योंकि भाषण तैयार है, क्योंकि वही टॉपिक है, जो बोलना है वो फिक्स है। परेशानी तो उसमें होती है कि जब नई चीजों पर बोलना है तो वो तो वहां तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए हर बार बोलते समय थोड़ा स्ट्रेस चाहिए, क्योंकि नया होना चाहिए, वो वही पुराना 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 सेम। उसमें तो यहां बात कर रहे हैं हम, वो जो कमेंट्री बनाई है हमने, एक मेंटल कमेंट्री इमोशनल हर्ट्स की, जो हमको वेदना, दुख और दर्द और पीड़ा हुई है उसको हमने इतनी बार रिपीट किया है कि वो एक कमेंट्री बन गई है, और जैसे हम बैठते हैं वो कमेंट्री ऑन होती है, चालू होती है, अपने आप रिवाइंड होती है, अपने आप रिविजन होता है उसका। और ये इतनी बार की है कमेंट्री कि वो कमेंट्री बिल्कुल अभी मास्टर हम बन गए उस कमेंट्री के। बीती को न चिताना, बीती का चिंतन न करना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। पांच स्टेप्स बताई, पहला बताया एक निर्णय कि मुझे अतीत के प्रभाव से मुक्त होना है, दूसरा बताया एक्सप्रेस करना, एक तो भगवान के सामने, यदि वो नहीं होता है तो कोई ऐसा व्यक्ति देखो जिस पर पूर्ण विश्वास है, निमित्त कोई आत्मा, उसे भी बताया जा सकता है। यदि कोई नहीं है तो अज्ञात एक खत लिख दो जो कभी भी कहीं पोस्ट नहीं करना है। तीसरा विक्टिम गेम, दूसरों को ना ब्लेम करना है ना तो खुद को ब्लेम करना है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो कुछ वास्तव में हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है, मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं। चौथा वर्तमान, उसके लिए वर्तमान की प्लानिंग बनाना। जैसे आज नया दिवस है, आज मुझे क्या करना है, क्या मैं करूं आज सारे दिन भर, उसकी प्लानिंग। लास्ट पांचवा, माफ कर देना, और सबसे बड़ी माफी किसको करनी है, खुद को। मैं अपने आप को माफ करता हूं, माना बहुत बड़ा पापी हूं पर ठीक है, क्योंकि हमने अपने आप को हमेशा कटघरे में खड़ा करके रखा है, और हम ही वकील हैं, और उस वकील बनकर उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, और जज बनकर सजा भी सुनाते हैं, और खुद ही दुखी भी होते हैं। हम ही वकील, हम ही जज, और हम ही अभी अपराधी, और ऐसा ये मुकदमा चालू है मेंटल कोर्ट अंदर ही अंदर, और पता नहीं अज्ञात से चालू ही है, खुद ही को दोषी दे दे। ठीक है, हुआ, अब माफ किया, खुद को भी माफ कर दो। इसमें भी महानता चाहिए, खुद को मैंने माफ किया है और मुझे क्योंकि आगे बढ़ना है, माफ इसलिए कर रहा हूं, उनको भी माफ इसलिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत किया, ठीक है उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने गलत किया माना, हमने भी गलत किया माना, गलती इधर से भी है उधर से भी है, परंतु मुझे अब आगे बढ़ना है इसलिए मैं माफ करता हूं उसको भी खुद को भी, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है इसलिए। तो ये पांच चीजें याद रखनी है। ओम शांति।